नमस्कार श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम की पुस्तक में से मरकुस रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक से आपको लाभ मिल रहा है। इसमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उसकी सेवकाई के विषय में बताया गया है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों।
प्रिय मित्र, आप सबको प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मेरा नमस्कार। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के वचन को समझने के लिए ज्ञान प्राप्त करें। हमारे दयालु प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस समय के लिए जिसे आपने हमें दिया है, ताकि फिर से एक बार हम आपके जीवित वचन का अध्ययन कर सकें। इस वक्त जब हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हम विनती करते हैं कि प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को आप अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ की परिपूर्णता दें। पवित्र आत्मा, आप प्रत्येक की सहायता करें। आप अपने नियंत्रण में हर एक को ले लें। हर एक प्रकार की चिंताओं, हर एक प्रकार की निराशाओं से आप उन्हें छुटकारा दें, ताकि जब वे वचन को सुने, निश्चित रूप से ये वचन उनके हृदयों में कार्य करने पाए, प्रत्येक जीवन आप में आशीष पाए और आत्मिक उन्नति करने पाए। इस समय को और हम इससे प्रत्येक के जीवन को आपके हाथ में सौंप देते हैं। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले अध्ययन में हमने अध्याय 14 समाप्त किया और जिसमें हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए और उसे धोखा दिया गया और इससे एक ने इनकार किया और कुछ उसे छोड़कर चले गए और वो रात उसके लिए एक पाप की रात बन गई थी। और आज हम अपने अध्ययन को अध्याय 12 से आरंभ करेंगे। आज के अध्ययन में हम यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना देखेंगे और पौलुस ने तीमुथियुस से कहा था कि संपूर्ण धर्मशास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और मनुष्य के लाभ के लिए है, जिसे हम दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 16 पद में पाते हैं। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान का यह अध्याय हमारे लिए विशेष अर्थ रखता है। विगत अध्याय में हमने देखा था कि यीशु को उसके वैरी बंदी बनाकर ले गए थे। उसके अपने उसे त्याग कर भाग खड़े हुए थे। एक ने उसके साथ विश्वासघात किया था और एक ने उसका इनकार किया था। मित्रों, उस रात पाप मुख्य विषय था और उसके दो पक्ष थे। पाप उसका नाश करना चाहता था और वह पाप के लिए ही कुछ कर रहा था। वह आपके और मेरे पापों के लिए मरने जा रहा था। इस कारण मैं कहूंगा कि क्रूस मसीही विश्वास के स्वविरोधी पक्षों में से एक है। यह युगान युग की एक त्रासदी है और साथ ही स्वर्ग और पृथ्वी की महिमामय विजय है। अतः हमें इस अध्याय में कष्ट उठाने वाले से सहानुभूति नहीं दिखाना है और न ही पराजय का विचार मन में लाना है। हमें इन दृश्यों को देखते हुए समय श्रद्धा से पूर्ण रहना है। मित्रों, मन में परमेश्वर के लिए धन्यवाद भरा होना है कि उसने हमें ऐसी महान मुक्ति दिलाई है। इन दृश्यों में क्रूर अन्याय और घोर संताप जो यीशु सहन कर रहा था, उसका दुख छिप नहीं सकता। अतः बर्बर क्लोविस ने जब सुसमाचार पढ़ा तो उसकी पुकार थी, काश मैं अपने सिपाहियों के साथ वहां होता। मित्रों, ध्यान दें कि परमेश्वर का पुत्र हमसे सहानुभूति नहीं चाहता था, वह हमारा विश्वास चाहता है। वचन में लिखा है रोमियो के पत्र 10 अध्याय उसके 9 और 10 में, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मित्रों, उसे आपके मन में सहानुभूति नहीं परंतु विश्वास चाहिए। मरकुस गतिविधियों का सुसमाचार है और अध्याय 15 में गतिविधि का परम स्वभाव निहित है। इस गतिविधि की पराकाष्ठा और ताजपोशी क्रूस ही है। यह क्रूस ही है जिसकी ओर संपूर्ण जगत और परमेश्वर का उद्देश्य समय के आरंभ से ही अग्रसर थे, क्योंकि वह जगत की नींव रखते समय ही बलि किया हुआ मेमना था। अब वह सुसमाचार गतिविधि में परिणित होता है। आगे चलकर पौलुस कहता है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। अतः आप देखते हैं कि सुसमाचार यीशु का कार्य है, न कि परमेश्वर की आज्ञा की आप कुछ करें। आप और मैं इस योग्य नहीं है कि परमेश्वर के ग्रहण योग्य कुछ कर पाए। आपकी और मेरी धार्मिकता मुक्ति पाने के लिए स्वीकार्य नहीं है। परमेश्वर हमें यह धार्मिकता मसीह के माध्यम से देता है। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया था और हमें न्याय में उचित ठहराने के लिए मृतकों में से जिलाया गया, जिसे हम रोमियो 4 उसके 25 में पाते हैं। मित्रों, इस अध्याय की रूपरेखा मैं आपको समझाना चाहता हूं। पहला, यीशु पिलातुस के समक्ष, पद 1-6। दूसरा, यीशु को अपराधी घोषित किया गया, पद 7-15। तीसरा, यीशु को कांटों का ताज पहनाया गया, पद 16-23। चौथा, यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, पद 24-41। पांचवा, यीशु की लोथ यीशु को दी गई नई कब्र, पद 42-47। मित्रों, आइए हम मार्कुस 15 उसके 1 पद को पढ़ें, जहां पर लिखा हुआ है, और भोर होते हुए तुरंत महायाजकों, पुरनियों, शास्त्रियों ने वरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ सौंप दिया। मित्रों, वे उसे मृत्यु दंड दे सकते थे, परंतु मृत्यु देना उनके अधिकार में नहीं था। केवल रोम की सरकार ऐसा कर सकती थी। इस कारण महासभा को रोम के न्यायालय में अपना निर्णय प्रस्तुत करना था कि वह उनके निर्णय को कार्यान्वित करे। वे जानते थे कि पिलातुस के समक्ष उनका अभियोग अर्थहीन होगा, अतः उन्होंने प्रातः काल की सभा करके अवैधानिक आरोपों का पुनरालोकन किया और उन्हें रोमी न्यायालय के ग्रहण योग्य बनाया। मित्रों, रोमी शासक पिलातुस इस समय यरूशलेम में था, जबकि उसका मुख्यालय केसरिया में था। केसरिया की जलवायु उसे भाती थी, क्योंकि वह तटीय प्रदेश था और वहां की जलवायु अति मनोरम थी। उसे यरूशलेम कदापि अच्छा नहीं लगता था, पर वहां केवल पर्व के कारण आया था कि विद्रोह की संभावना का दमन कर पाए। रोमी शासन को विद्रोह, जुलूस आदि स्वीकार योग्य नहीं थे। यह एक कारण था कि रोम ने 1000 वर्ष वैश्विक साम्राज्य के रूप में राज्य किया। मेरे विचार में आज के राष्ट्रों को यह सीखना चाहिए। मित्रों, पिलातुस अति नीतिपूर्ण व्यक्ति था। रोम के न्याय से बढ़कर इष्ट सिद्धि उसके जीवन की प्रेरणा थी। जब उसे यह स्पष्ट हो गया कि यीशु निर्दोष था, तब उसने उसे स्वतंत्र करना चाहा, परंतु वह इससे बढ़कर धर्म के अगुओं को प्रसन्न करना चाहता था। आप यहां देखेंगे कि यीशु उसके साथ सहयोग भी नहीं कर रहा था। उसे यह आशा थी कि यदि यीशु उसके साथ सहयोग करे तो वह धर्म के अगुओं को भी प्रसन्न कर लेगा। पिलातुस एक घृष्ट राजनेता का अच्छा उदाहरण है, जो दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहता है। सब पक्षों को प्रसन्न करने की इच्छा है। ऐसी मानसिकता रखने वाला किसी को प्रसन्न नहीं कर पाता है। हम मरकुस 15 उसके 2 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, और पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसको उत्तर दिया कि तू आप ही कह रहा है, अर्थात तूने उचित ही कहा है, क्योंकि मैं हूं। मरकुस 15 उसके 3-6 पद में हम पढ़ते हैं, और महायाजक उस पर बहुत बातों का दोष लगा रहे थे। पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता? देख, ये तुझ पर कितनी बातों का दोष लगाते हैं। यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया, यहां तक कि पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उस पर में किसी एक बंधुए को, जिसे वे चाहते थे, उनके लिए छोड़ दिया करता था। मित्रों, पिलातुस यह देखकर चकित हुआ कि बंदी वहां खड़ा है, परंतु अपने हित में कुछ नहीं कहता। मैं कल्पना कर सकता हूं कि अन्य बंदी किस प्रकार अपना प्रतिवाद प्रस्तुत करते होंगे, परंतु यह बंदी भिन्न था। वह अपना प्रतिवाद प्रस्तुत नहीं कर रहा था। पिलातुस इसका कारण जानना चाहता था। मित्रों, यूहन्ना के सुसमाचार को पढ़कर हम समझ पाते हैं कि पिलातुस और धर्म के अगुओं में बहुत विवाद हुआ था, क्योंकि पिलातुस यीशु को स्वतंत्र करना चाहता था। वह यीशु को भीतर ले जाता है और फिर बाहर आकर अगुओं से वार्तालाप करता है और फिर यीशु को भीतर ले जाकर उसके सहयोग की आशा करता है और अंत में उसे यह समझ में आ जाता है कि निर्णय लेने के लिए उसे अपने ही पैरों पर खड़ा होना है। यह तो जीवन का सिद्धांत है, प्रत्येक मनुष्य को अपने ही निर्णय लेने होते हैं। तब पिलातुस ने सोचा कि वह एक अपराधी को छोड़कर इस दुविधा से मुक्त हो जाएगा। वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वे बरब्बा को मुक्ति देंगे, अर्थात बरब्बा के मुक्ति की मांग करेंगे और यीशु की मृत्यु वरन क्रूस की मृत्यु चाहते थे। वह इस दुविधा से निकल आना चाहता था। हम मार्कुस 15 उसके 7 पद में पढ़ते हैं, और बरब्बा नाम एक मनुष्य उन बलवाइयों के साथ बंधुआ था जिन्होंने बलवे में हत्या की थी। मित्रों, यहां पर एक हत्यारा एक विद्रोही था। वह उस समय का कुख्यात अपराधी था। उसका दंड वास्तव में क्रूस की मृत्यु थी। मेरे विचार में जो क्रूस बरब्बा के लिए था उस पर यीशु को चढ़ाया गया। हमार कुछ 15 उसके 9 से 13 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, पिलातुस ने उनको यह उत्तर दिया, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को छोड़ दूं? क्योंकि वह जानता था कि महायाजकों ने उसे डाह से पकड़वाया है। परंतु महायाजकों ने लोगों को उभारा कि वह बरब्बा ही को उनके लिए छोड़ दे। यह सुन पिलातुस ने उनसे फिर पूछा, तो जिसे तुम यहूदियों का राजा कहते हो उसको मैं क्या करूं? वे फिर चिल्लाए कि उसे क्रूस पर चढ़ा दे। पिलातुस ने उनसे कहा, क्यों, इसने क्या बुराई की है? मित्रों, यहां पर एक अप्राकृतिक और अनहोनी बात हो रही है। पिलातुस अस्वस्थ था कि यीशु निर्दोष है। वहां एक और अपराधी था जो कुख्यात अपराधी था। वह सोच रहा था कि यदि वह बरब्बा को यीशु के साथ खड़ा करेगा तो जनता बरब्बा की मुक्ति कभी स्वीकार नहीं करेगी। वह नहीं जानता था कि मनुष्य कितना गिर सकता है, धर्म कितना गिर सकता है। जब उन्होंने बरब्बा की मुक्ति की मांग की तो पिलातुस ऐसा विमुख हो गया कि उसने उन्हीं से पूछा, यीशु के साथ क्या करें? तब हम 15 उसके 14 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, परंतु वे और भी चिल्लाए कि उसे क्रूस पर चढ़ा दे। मित्रों, वहां उपस्थित भीड़ को निर्देश दिया गया था कि वे केवल यीशु को क्रूस पर चढ़ाने की मांग करें। भीड़ की प्रवृत्ति यही होती है कि एक ही पुकार लगाए। उन्हें तर्क से, न्याय से कोई सरोकार नहीं होता है। वे अधिकाधिक पुकार रहे थे, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। तब हम मार्कुस 15 के 15 पद में पढ़ते हैं, तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाया जाए। पिलातुस एक निर्बल बिना पेंदे का लोटा था। उसने जनसमूह की पुकार सुनी और यीशु को क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए भेज दिया। यहां रोम का न्याय चूक गया। एक निर्दोष को मृत्युदंड दिया गया। एक मिनट जरा गहराई से सोचे कि उसने हमारा स्थान लिया था, हम निर्दोष नहीं हैं। मित्रों, हम मार्कुस 15 उसके 16 में पढ़ते हैं, और सिपाही उसे किले के भीतर के आंगन में ले गए जो प्रिटोरियन कहलाता है, और सारी पलटन को बुला लाए। जब एक अपराधी क्रूस पर मृत्युदंड पाता था तब उसे सैनिकों को सौंप दिया जाता था। उनका व्यवहार पाशविक होता था, अर्थात पशु जैसा होता था। वे अपराधी का अपमान करते थे, उन्हें कष्ट देते थे और अपनी उत्पीड़न वासना को शांत करने के लिए अपराधी को खेल का साधन बना लेते थे। उन्होंने यीशु के साथ भी वैसा ही किया। मित्रों, उन्होंने यीशु के साथ एक खेल खेला। उसकी आंखें बांध दी गई और उसके मुंह पर बारी बारी से मारने लगे। यीशु को अनुमान लगाकर बताना था कि वह कौन था जो उसके चेहरे पर वार करता था। इस प्रकार उन्होंने मार मार कर उसका चेहरा ऐसा सुझा दिया कि वह पहचान में भी नहीं आ रहा था। जब वे उसकी आंखें खोल देते तब उसे यह भी बताना होता था कि किसने उसे नहीं मारा था। यह खेल वे बार बार दोहराते थे, और शमौन कुरोनी को उन्होंने उसका क्रूस उठाने के लिए पकड़ा, क्योंकि उत्पीड़न के कारण यीशु थक कर चूर हो गया था, अन्यथा वह अति बलवान था और युवावस्था में था। हम मार्कुस 15 उसके 17 और 18 पद में पढ़ते हैं, और उन्होंने उसे वैजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे कि हे यहूदियों के राजा नमस्कार। मित्रों, उसे वैजनी वस्त्र पहनाना और कांटों का ताज उसके सिर पर रखना उसका ठड्ढा करना था, अर्थात उसका मजाक उड़ाना था। तब हम मार्कुस 15:19 में पढ़ते हैं, और वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहे। मित्रों, क्रिया का रूप यह दर्शाता है कि वे उसे मारते रहे और उस पर थूकते रहे। यह घृणा से कहीं बढ़कर था। यह पाशविक और निर्दयी व्यवहार था, मनुष्य की घृष्टता का प्रमाण। मित्रों, अब आप समझते होंगे कि आपका स्थान लेने पर उसे क्या क्या सहन करना पड़ा था। अभी उसके लिए क्रूस का कष्ट भी बाकी था। मार्कुस 15:20-21 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, और जब वे उसका ठड्ढा कर चुके तो उस पर से वैजनी वस्त्र उतार कर उसी के कपड़े पहनाए और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। और सिकंदर और रूपुस का पिता शमोन नाम एक कुरेनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था उधर से निकला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। मित्रों, इतने कष्ट देने के बाद वे उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले गए। यह शमोन अफ्रीका के कुरे नगर से फसह के पर्व में वहां आया था। उन्होंने उसे पकड़ा कि वह यीशु का क्रूस उठाए। नगर द्वार तक तो यीशु ने क्रूस उठाया था। तब हम आगे पढ़ते हैं, 15:22 पद में लिखा है, और वे उसे गुलगुता नाम जगह पर, जिसका अर्थ खोपड़ी की जगह है, लाए। गुलगुता का अर्थ है खोपड़ी, परंतु हमारा स्थान है कलवरी। मरकुस 15:23 पद में लिखा है, और उसे मुर मिला हुआ दाखरस देने लगे, परंतु उसने नहीं लिया। मित्रों, दाखरस में मुर इसलिए मिलाया जाता था कि क्रूस पर चढ़े अपराधी को दर्द की अनुभूति न हो। यह बड़ी ही रोचक बात है कि जब यीशु का जन्म हुआ था तब उसे मुर भेंट किया गया था, और जब उसकी मृत्यु हो रही है तब भी उसे मुर दिया जा रहा था। मुर मृत्यु का चिन्ह है। मार्कुस 15:24 पद में हम पढ़ते हैं, तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्ठियां डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। मित्रों, कोई भी सुसमाचार का लेखक क्रूस का ब्यौरा नहीं देता है, वे केवल क्रूस के आसपास की घटनाओं का उल्लेख करते हैं। परमेश्वर की आत्मा ने वहां पर्दा डाल दिया था कि निष्क्रिय मस्तिष्क को अपवाद का विषय न मिले। उसके वस्त्रों का बांटा जाना भजन संहिता 22:18 की भविष्यवाणी का पूरा होना है। मार्कुस 15:25 पद में आगे पढ़ते हैं, और पहर दिन चढ़ा था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसका दोष पत्र लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया कि यहूदियों का राजा है। लिखा है कि उसे क्रूस पर चढ़ाने के समय एक पहर दिन चढ़ आया था, अर्थात सुबह के 9 बज रहे थे। मरकुस यहूदी समय के अनुसार चलता है, जबकि यूहन्ना रोमी समय को दर्शाता है। दोष पत्र के बारे में हमें चारों सुसमाचारों को एक साथ रखकर देखना होगा। यूहन्ना के अनुसार उन्होंने इब्रानी में, यूनानी में और लतीनी भाषा में लिखा था। कोई भी सुसमाचार का लेखक स्पष्ट नहीं कर रहा है। उसे क्रूस पर चढ़ाने का कारण था यहूदियों का राजा। इस कारण को उचित कहना असंगत है। यीशु ने रोम के विरोध विद्रोह नहीं किया था, उसने अपने आप को इसराइल के लिए दे दिया था, परंतु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। मित्रों, हम मार्कुस 15:27-28 पद में आगे पढ़ते हैं, और उन्होंने उसके साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिने और एक उसकी बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाए। तब धर्मशास्त्र का वह वचन कि वह अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ। यीशु के दोनों ओर 2 अपराधियों को क्रूस पर चढ़ाया गया था, और मरकुस कहता है कि वह धर्मशास्त्र की भविष्यवाणी की पूर्ति के निमित्त हुआ। वह यशायाह नबी की पुस्तक 53:12 का संदर्भ देता है। लिखा है, वह अपराधियों के संग गिना गया। तब हम मार्कुस 15:29-31 पद में पढ़ते हैं, और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिला कर और यह कहकर उसकी निंदा करते थे कि वाह, मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा ले। इसी रीति से महायाजक भी शास्त्रियों समेत आपस में ठड्ढे से कहते थे कि इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। मित्रों, उसका कहना सच ही था। यीशु अन्यों को बचाए और अपने आप को नहीं बचाए, यह संभव नहीं था। उसने मनुष्य को बचाने के लिए अपने आप को दे दिया था। यह मुक्ति का एक उत्कृष्ट सिद्धांत है। हम मरकुस 15 के 32 से 34 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, इस्राएल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें, और जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे। और दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लमा सबक्तनी, जिसका अर्थ यह है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप यहां ध्यान दें। मरकुस क्रूस की घटना को समय के क्रम में व्यक्त करता है। 9 बजे उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, फिर लगभग दिन के 12 बजे संपूर्ण क्षेत्र पर अंधकार छा गया, जो तीसरे पहर 3 बजे तक छाया रहा। यीशु 6 घंटे क्रूस पर लटका रहा। इन 6 घंटों में पहले 3 घंटे प्रकाश था और दूसरे 3 घंटे अंधकार था, परंतु पहले 3 घंटे आत्मिक अंधकार था और दूसरे 3 घंटे आत्मिक प्रकाश था। क्यों? क्योंकि प्रथम 3 घंटों में मनुष्य ने उसे क्रूस पर चढ़ाया और उसका ठड्ढा किया। पहले तो उसके साथ क्रूशित अपराधी ने, फिर नीचे खड़े मनुष्यों ने। मनुष्यों ने यथासंभव दुष्टता की, परंतु अगले 3 घंटे में परमेश्वर ने कार्य किया। प्रथम 3 घंटे वह मनुष्य के हाथों कष्ट उठा रहा था और दूसरे 3 घंटे वह उन्हें मनुष्यों के लिए कष्ट उठा रहा था। पहले 3 घंटों में वह पाप के कारण मर रहा था और अगले 3 घंटों में वह संसार के पाप के लिए मर रहा था। इस प्रकार अंधकार के क्षणों में आत्मिक प्रकाश था जब परमेश्वर कार्य कर रहा था। प्रथम 3 घंटों में पाप क्रियाशील था कि यथासंभव यीशु का नाश करे। अगले 3 घंटों में वह अपने प्राण को पाप की बलि चढ़ा रहा था। वह संसार के पाप के लिए प्रार्थना कर रहा था। इसी समय वह हमारे लिए पाप बन गया। मित्र, वह परमेश्वर द्वारा त्याग दिया गया, परंतु फिर भी परमेश्वर उसमें उपस्थित था और संसार का अपने साथ मेल करा रहा था। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 19 पद में हम पढ़ते हैं कैसे स्वयं विरोधी बातें हैं। मरकुस 15 उसके 35 और 36 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, जो पास खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, देखो यह एलिय्याह को पुकारता है, और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखें कि एलिय्याह उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। प्रिय श्रोता मित्र, आप समझ नहीं पाए कि वह क्या कह रहा था। उन्होंने सोचा कि वह एलिय्याह को पुकार रहा था। उन्होंने उपहास में कहा, देखें एलिय्याह उसे बचाने आता है क्या। उन्हें क्या संदेह मात्र भी नहीं हुआ कि वह मसीहा हो सकता है। मित्रों, मेरे विचार में विवेक अवश्य सच प्रकट करता है और किया भी कि वह मसीहा है। उन्होंने प्यास बुझाने के लिए उसे सिरका दिया। यह कष्ट निवारक पदार्थ या पेय नहीं था। उसने भविष्यवाणी पूरी करने को उसे पिया। लोगों ने मेरे खाने के लिए इंद्रायन दिया और मेरी प्यास बुझाने के लिए मुझे सिरका पिलाया, जिसे हम भजन संहिता 69 उसके 21 पद में पाते हैं। मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं बहुत गहरे रूप में विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर के वचन ने आपसे अवश्य बातचीत किया है, क्योंकि हमने देखा है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के बदले में क्रूस पर बलि किए गए। यद्यपि वो निर्दोष थे, उसमें कोई भी दोष नहीं पाया गया, परंतु वे क्रूस पर चढ़ाए गए। मेरे लिए और आपके लिए उन्हें कोड़ों की मार सहनी पड़ी। मेरे मित्र, आज मेरे लिए और आपके लिए एक समय है कि हम उसके पास में आए और अपने पापों को स्वीकार करके कहें, हाँ प्रभु, मैंने पाप किया है, मैंने चोरी की है, मैंने हत्या किया है, मैंने व्यभिचार किया है, मैंने जाने अनजाने में बहुत ऐसे काम किए हैं, बहुत लोगों के दिलों को दुखाया है, इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए थी, लेकिन आपने मेरी सजा अपने ऊपर ले लिया और मुझे उस पाप के बंधन से छुड़ा लिया। इसलिए प्रभु आप मेरे जीवन में आइए और मेरे जीवन का संचालन कीजिए। मेरे मित्र, आज आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें और निश्चय जाने कि आपके जितने भी बड़े पाप क्यों ना हो, वो आपको क्षमा करने में समर्थ हैं, क्योंकि उसने आपके पापों को भी क्रूस पर ले लिया। आपके लिए वो मर गए, आपके लिए वो सताए गए, मेरे लिए सताए गए, हम सबके लिए सताए गए, सारे जगत के लिए वो मरे हैं। एक विशेष जाति, एक विशेष धर्म या किसी विशेष समुदाय या रंग के लिए नहीं, लेकिन संपूर्ण जगत के लिए, मानव जाति के लिए मरे हैं। मित्रों, आइए हम प्रार्थना करें। मेरे पिता परमेश्वर, जितने ने आपके वचन को सुना है, प्रभु हमारी प्रार्थना है कि आप उनके दिल में कार्य करें, उनके विचार, उनके प्रार्थनाओं को आप सुने और उनके जीवन में प्रभु आप उन्हें आशीष दें, ताकि आज के दिन आप उनके जीवन में आ जाएं, आप उनके उद्धारकर्ता हों और वे जाने पाए कि आपने उनके पापों को उठा लिया है, आपने उनके पापों को क्षमा कर दिया है और वे अपने जीवन में शांति पाकर आपको आदर दे सकें। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
मसीह इस जान में, ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन